अर्तक्षत बादशाह के 20वें बरस निस्यान के महीने में जब मैं उसके आगे थी तो मैंने मैं उठाकर बादशाह को दी और इससे पहले मैं कभी उसके हुजूर उदास नहीं हुआ था। तो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है बावजूद कि तू बीमार नहीं है? बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ न होगा। तब मैं बहुत डर गया और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों न हो, जबकि वो शहर जहाँ मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादिम पर तेरे कर्म की नजर है तो तुम मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे ताकि मैं उसे तामीर करूं। तब बादशाह ने मलका भी उसके पास बैठी थी मुझसे कहा, तेरा सफर कितनी मुद्दत का होगा और तू कब लौटेगा? गर बादशाह की मर्जी हुई कि मुझे भेजे और मैंने वक्त मुकर्रर करके उसे बताया और मैंने बादशाह से ये भी कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो तो दरिया पार के खात्मों के लिए मुझे परवाने अनायत हों कि वो मुझे यहूदा तक पहुंचने के लिए गुजर जाने दे और आसिफ के लिए जो शाही जंगल का लिबान है एक साथ मिले कि वो हैकल के किला के फाटकों के लिए और शहर तना और उस घर के लिए जिसमें मैं रहूंगा कड़िया बनाने को मुझे लकड़ी दे और तुझे मेरे खुदा की कसरत का हाथ मुझ पर था। बादशाह ने मेरी अर्ज कबूल की। तब मैंने दरिया पार के हाकिमों के पास पहुंचकर बादशाह के परवाने उनको दिए और बादशाह ने फौजी सरदारों और सवारों को मेरे साथ कर दिया था और जब सुमलत हूरनी और अमूनी गुलाम टोबिया ने ये सुना कि एक शख्स बनी इसराइल की बहबूदी का फहन आया है तो वो नहायत रंजीदा हुए और मैं यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन रहा। फिर मैं रात को उठा, मैं भी और मेरे साथ चंद आदमी, पर जो कुछ यरूशलेम के लिए करने को मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला था वो मैंने किसी को ना बताया और जिस जानवर पर मैं सवार था उसके सिवा और कोई जानवर मेरे साथ ना था। और मैं रात को वादी के फाटक से निकलकर अजदहा के कुएं और कूड़े के फाटक को गया और यरूशलेम की फसील को जो तोड़ दी गई थी और उसके फाटकों को जो आग से जले हुए थे देखा। फिर मैं चश्मा के फाटक और बादशाह के तालाब को गया पर वहाँ उस जानवर के लिए जिस पर मैं सवार था गुजरने की जगह न थी। फिर मैं रात ही को नाले की तरफ से फसील को देख कर लौटा और वादी के फाटक से दाखिल हुआ और यूं वापस आ गया और हाकिमों को मालूम न हुआ कि मैं कहां कहां गया या मैंने क्या क्या किया। और मैंने उस वक्त तक ना यहूदियों ना काहिनों ना अमीरों ना हाकिमों ना बाकियों को जो कारगुजार थे कुछ बताया था। तब मैंने उनसे कहा, तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान ना रहे। और मैंने उनको बताया कि खुदा की शफ़क़त का हाथ मुझ पर कैसे रहा और ये कि बादशाह ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। उन्होंने कहा, हम उठकर बनाने लगे तो इस अच्छे काम के लिए उन्होंने अपने हाथों को मजबूत किया पर जब सुमलत सूरनी اور امونی غلام توبیہ اور عربی سکین نے یہ سنا تو وہ ہم کو ٹھٹھوں میں اڑانے اور ہماری حقارت کر کے کہنے لگے، تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ کیا تم بادشاہ سے بغاوت کرو گے؟ تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا، آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا۔ اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے، لیکن یروشلم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ، نہ حق، نہ یادگار ہے۔